सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जयै धवलंगते णावुर्यसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी गई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। प्रथम पुस्तक जो पेज दोष विहत्ति नाम का अधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 141 पर आ गए, 141। कल हमने सूत्र किसे कहना उसकी बात देखी थी, यहाँ जो उद्धरण रूप 68 नंबर की गाथा दी थी उसको पढ़ा था, उसका अर्थ भी देखा था। अर्थ दोबारा देखते हैं, देखो, जिसमें अल्प अक्षर हो, यानी कम से कम अक्षरों में, जो असंदिग्ध हो, संदिग्ध है यानी ऐसे अस्पष्ट है, यानी पूरा क्लियरिटी जिसमें नहीं है, और ये असंदिग्ध यानी स्पष्ट हो, जिसमें सार अर्थात निचोड़ भर दिया हो, जिसका निर्णय गूढ़ हो, जो निर्दोष हो, संयुक्तिक हो और तथ्यभूत हो, उसे विद्वान जन सूत्र कहते हैं। अभी इस पर शंकाकार शंका उठाता है, यह संपूर्ण सूत्र लक्षण तो जिन देव के मुख कमल से निकले हुए अर्थ पदों में ही संभव है, गणधर के मुख से निकली हुई ग्रंथ रचना में नहीं, क्योंकि उनमें महापरिमाण पाया जाता है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का जो महापरिमाण, उसका प्रमाण बहुत बड़ा है। समाधान, नहीं, क्योंकि गणधर के उद्धव करना, गणधर के वचन भी सूत्र के समान होते हैं, इसलिए उनकी ग्रंथ रचना में भी सूत्रत्व के प्रति कोई विरोध नहीं आता है। अर्थात सूत्र के समान होने के कारण गणधर की द्वादशांग रूप ग्रंथ रचना भी सूत्र कही जाती है। विशेषार्थ, कृति अनुयोग द्वार में वीरसेन स्वामी ने अल्पाक्षरम असंदिग्धम इत्यादि रूप से सूत्र का लक्षण कहकर तदनुसार तीर्थंकर के मुख से निकले हुए बीज पदों को सूत्र कहा है, और सूत्र के द्वारा गणधर देव में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सूत्र सम कहा है, सूत्र के समान वो सूत्र सम ज्ञान, तथा बंधन अनुयोग द्वार में सूत्र का अर्थ श्रुत केवली या द्वादशांग रूप शब्दागम किया गया है, और श्रुत केवली के समान श्रुत ज्ञान को या आचार्य के उपदेश के बिना सूत्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सूत्र सम कहा है। इनमें से यद्यपि बंधन अनुयोग द्वार में की गई परिभाषा के अनुसार द्वादशांग का सूत्रागम में अंतर्भाव हो जाता है, यानी सूत्रागम में अंतर्भाव हो जाता है, उसी में इंक्लूड होते हैं, पर कृति अनुयोग द्वार में की गई सूत्र की परिभाषा के अनुसार द्वादशांग का सूत्रागम में अंतर्भाव न होकर ग्रंथागम में अंतर्भाव होता है। ये वो सूत्रागम नहीं, ग्रंथागम है ऐसा कहते हैं, क्योंकि वहां कृति अनुयोग द्वार में गणधर देव के द्वारा रचे गए द्रव्य श्रुत को ग्रंथागम कहा है, ये स्वयं आचार्य वीरसेन ने ही वहां लिखा है। जान पड़ता है वीरसेन स्वामी ने सूत्र की इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर यहाँ सूत्र विषयक चर्चा की है। उसका सार यह है कि सूत्र की पूरी परिभाषा जिनदेव के द्वारा कहे गए अर्थोपदों में ही पाई जाती है, यानी उसके जो लक्षण है सभी के सभी लक्षण जिनेन्द्र भगवान के वाणी में पाए जाते हैं, गणधर देव के द्वारा गूंथे गए द्वादशांग में नहीं। अतः द्वादशांग को सूत्र नहीं कहा जा सकता। यह भी 142 पेज पर चल रहा है, विशेषार्थ में सेंटर में अभिप्राय है, डैश लिखा है वहां से। इस शंका का यह भी अभिप्राय है, जबकि गणधर देव के द्वारा गूंथे गए द्वादशांग में सूत्रोत्व नहीं है, तो फिर प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्न दशपूर्वी के वचन सूत्र कैसे हो सकते हैं? शंकाकार की शंका क्या है? गणधर के जो ग्रंथ रचना है वह भी सूत्र नहीं है, तो अन्य आचार्यों ने लिखे हुए कैसे हो सकते हैं? ऐसी उसकी शंका है। बंधन अनुयोग द्वार में कही गई सूत्र की परिभाषा के अनुसार तथा अन्य आगमिक प्रमाणों के आधार से, आगमिक यानी आगम में बताए हुए प्रमाण के आधार से, गणधर देव आदि के वचन कदाचित सूत्र हो भी जाए तो भी गुणधर आचार्य के, यानी गणधरों के, ठीक है, गणधरों के या चतुर्दशपूर्वियों के, दशपूर्वियों के, वो तो समझ सकते हैं, परंतु ये जो गुणधर भट्टारक जिन्होंने ये जो कषाय प्रावृत की रचना की है गाथा सूत्रों में, उनके वचनों को तो सूत्र कहना किसी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि गुणधर आचार्य, गणधर, प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली, ये श्रुत हुआ, श्रुतकेवली और अभिन्न दशपूर्वी, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अंगों का और पूर्वों का एक देश ज्ञान तभी बाकी था। सभी तो पूर्व यानी अंगधारी, 10 अंगधारी या चतुर्दश पूर्वधारी ऐसे तो नहीं थे, 10 पूर्वधारी या चतुर्दश पूर्वधारी। यह पूर्वोक्त शंका का सार है, यह शंका की ही सब विशेषार्थ में बताया, शंका क्या है उसको समझाया है। इसका समाधान यह किया गया है, यद्यपि उक्त कथन के अनुसार गुणधर आचार्य की रचना का सूत्रागम में अंतर्भाव नहीं होता है, फिर भी गुणधर आचार्य की रचना सूत्रागम के समान निर्दोष है। अल्पाक्षर है और असंदिग्ध है, इसलिए इसे भी उपचार से सूत्र मानने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः गुणधर आचार्य की गाथाएं भी सूत्र सिद्ध हो जाती है। सारांश यह है कि जिनदेव के मुख से निकले हुए बीज पद पूरी तरह से सूत्र है तथा गणधर आदि के वचन उनके समान होने से सूत्र सम है, यानी सूत्र के समान है। अब ये 3 नंबर के ऊपर गाथा सूत्र ऊपर दिया है, नीचे उसको संख्या नहीं ली है। हम पढ़े ऊपर पढ़ेंगे, पिज्ज दोष विहत्ति ठिली अनुभागे च बंधगे चेव तिन्ने दागाहा हो पंचसु अथे सुना दौवा। ये दूसरे सूत्र में, दूसरे गाथा में उन्होंने बताया था कि मैं तो मूल के अनुसार इसमें 15 अर्थाधिकार करूंगा, तो उसके बाद अब यहां बता रहे हैं। पेज दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, अकर्म बंध की अपेक्षा बंधक और कर्म बंध की अपेक्षा संक्रम, ये 5 अर्थाधिकार हैं। अथवा पूर्वोक्त प्रारंभ के 3 तथा अनुभागे च, च लिखा है ना ऊपर, ठिदी अनुभागे च, यहाँ आए हुए च शब्द से सूचित और कौन कौन से है उसमें, तो कहते हैं प्रदेश विभक्ति, स्थित्यंतिक प्रदेश और जीना जीन प्रदेश, ये मिलकर चौथा अर्थाधिकार और बंधगे इस पद से बंधक और संक्रम, इन दोनों की अपेक्षा पांचवा अर्थाधिकार है। इन पांचों अर्थाधिकारों में आगे आई तीन गाथाएं जानना चाहिए। ये विषय क्या है उसको बताया, अर्थाधिकार बता। हाँ? देखो, उन्होंने पेज 231 स्थिति अनुभाग कर्म की अपेक्षा बंधक और कर्म की अपेक्षा संक्रम, ये पांच अर्थाधिकार है। और ये पहले जो तीन बताए पेज 231 स्थिति और अनुभाग और च में, उसी में प्रदेश विभक्ति और स्थित्यंतिक प्रदेश जीना जी ने मिलकर चौथा अधिकार, चौथे अधिकार को अकेला ऊपर आगे लिखा है बंधगे चेव, पेज 231 ठिदी अनुभागे च बंधगे चेव, वो च शब्द में उन्होंने ये दो शब्द निकाले, चौथा और पांचवा अर्थाधिकार उसमें से निकाला। अब इसी पर हाँ जय धवलाकार उसकी टीका लिखेंगे, ये गाथा की टीका भी लिखेंगे, यानी उसका और अर्थ खोलेंगे। पूर्वोक्त गाथा में आए हुए पेज दोष पद के निर्देश से, निर्देश ने कथन से, पेज्जम वा दोषम वा इत्यादि रूप से यहाँ मूल में कही गई गाथा सूचित होती है, क्योंकि इस गाथा के एक देश का निर्देश पेज दोष विहत्ति इत्यादि गाथा में किया गया है। तो ये गाथा उन्होंने ऊपर उद्धृत की है, नीचे वो फिर दोबारा नहीं लिखी है। देखो ऊपर है 69 नंबर जिसको लिखा है, ये कषाय पाहुड़ की गाथांग 21 है। पेज्जम वा दोसं वा कम्मिकसायम्मिकस्सवणयस्स दुट्ठो व कम्मिदव्वे पियायदेको कहिं वावि, यानी आगे ये गाथा आने वाली है तो उसी का रेफरेंस यहाँ दिया है। तथा क्योंकि उन्होंने आगे आने वाले अर्थाधिकार बताए ना, तो कहाँ कौन सी गाथा है उसको यहाँ बताते हैं। तथा पूर्वोक्त गाथा में आए हुए विहत्ति ठिदी अनुभागे च इस पद से भी पयड़ीय मोहनी मोहनिज्जा इत्यादि रूप से मूल में आई हुई गाथा सूचित होती है। ये पयड़ीय मोहनिज्जा ऊपर लिखी है 70 नंबर और वो कषाय पाहुड़ सूत्र गाथांक उसका 22 नंबर है, पढ़ेंगे उसको। पयड़ीय मोहनिच्चा च विहत्ति तह ठिदीय अनुभागे उक्कस्सम अनुक्कस्सम जीणम अजीणम च ठिदीयम वा, क्योंकि इस गाथा के एक देश का निर्देश पेज दोष विहत्ति इत्यादि गाथा में पाया जाता है। ये पेज दोष विहत्ति वो अभी हमने 30 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसमें ठिदी अनुभागे च लिखा था, तो उसी की बात इसमें से वो एक देश रूप से वहां लिखी है। तथा आगे गाथा में आए हुए बंधगे चेय, चे वो आया है वहां, इस पद से भी कदी पयड़ियो बंधरी इत्यादि रूप से आगे मूल में कही गई गाथा सूचित होती है। आगे आने वाली गाथाओं का विषय यहाँ उन्होंने, यानी कौन से विषय आने वाले हैं, तो उस विषय को कहने वाली गाथाएं आगे कौन सी है उसको यहाँ पहले ही बता दिया उन्होंने, क्योंकि इस गाथा के एक देश का निर्देश पेज दोष विहत्ति इत्यादि गाथा में पाया जाता है। इस प्रकार ये तीन गाथाएं पांच अर्थाधिकारों में निबद्ध हैं। ये आगे वाला जो है ना कदी पयड़ियो बंदरी, वो ऊपर 71 नंबर की दी है और वो कषाय पाहुड़ सूत्रांक सूत्र गाथांक 23 की है, यानी आगे 23 नंबर में ये गाथा आने वाली है, पढ़ेंगे हम इसको। कदी पयड़ी यो बंधदी ठिदी अणुभागे जहन्न मुक्कसम संकामे दिकदिं वा गुणहीनम वा गुणविशिष्टम। इसका जो अर्थ है उसकी चर्चा है वो तो आगे क्रम से आएगी। यहाँ तो इस ग्रंथ में कौन से विषय आने वाले हैं उसको सूचित किया है तीसरे गाथा में। शंका, वे पांच अर्थाधिकार कौन कौन हैं ये तो बता चुके, फिर भी यहाँ दोबारा पूछ रहा है। शंका, उसका समाधान। पेज दोष विभक्ति यह पहला, स्थिति विभक्ति यह दूसरा, अनुभाग विभक्ति यह तीसरा, कर्मबंध के ग्रहण की अपेक्षा संक्रम यह चौथा, तथा बंध के इस पद की फिर से आवृत्ति करने पर कर्मबंध के ग्रहण की अपेक्षा संक्रम यह पांचवा, कर्मबंध के ग्रहण की ये वही बात आई ना दो बार, इसलिए फिर से आवृत्ति की, उसकी पुनरावृत्ति रिपीट किया। इस प्रकार ये पांच अर्थाधिकार हैं। यहाँ पर हाँ अकर्म की, वही मैं सोच रही, अकर्म की अपेक्षा बंधगे में दो बातें उन्होंने ली, अकर्म बंध की अपेक्षा बंधक और कर्म बंध की अपेक्षा संक्रम ऐसा कहा था। यहाँ इसी को ऊपर हम देखते हैं प्राकृत में क्या लिखा है। देखो तीसरी लाइन में प्राकृत, नीचे से चौथी लाइन, बंधगे ती चौथो अकम्म बंधक गहना दो, पुनो भी बंधगे ती आवित्तीय कम्म बंध गहना दो पंचमो अर्थाधियारो, अकम्म बंध गहना दो, अकर्म बंध की हाँ वहां अ लगाना रह गया। देखो देखो यहाँ प्राकृत में नीचे से चौथी लाइन, बंधगे ती यानी बंधगे ऐसा कहने पर चौथो अकम्म बंधक गहना दो, जैसे यहाँ लिखा है तीसरे गाथा के अर्थ में लेफ्ट साइड में 142 पृष्ठ पर हिंदी में, जहां गाथा का अर्थ शुरू किया था उसकी पहली लाइन में, अकर्म बंधक की अपेक्षा बंधक यानी बंधक शब्द से अकर्म बंधक की अपेक्षा भी होगी। गाथा के अर्थ कहां से शुरू होता है, बोल्ड लेटर जहां लिखा है, हाँ हाँ वही वही पहली लाइन में, पहली लाइन में अकर्म बंधक की अपेक्षा बंधक वैसे यहां भी चाहिए। कर्म बंधक की अपेक्षा संक्रम और अकर्म बंधक की अपेक्षा बंधक ऐसे वहां लिखा था, तो यहाँ समाधान में ऊपर तो ठीक लिखा है उन्होंने प्राकृत में, पर उसका ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी है। देखो क्या, मैं फिर प्राकृत का पढ़ती हूँ समाधान वाला, 143 पृष्ठ पर नीचे से पांचवी लाइन चौथी लाइन, जहाँ अनुभाग विहत्ति त्यदियो वो समाप्त हुआ, उसके बाद चतुर्थ की बात करते हैं, बंधगे ती चौथो यानी बंधक ऐसा कहने पर इस पद से अकम्म बंधक गहना दो, अकर्म बंध का ग्रहण होता है, बंधक कहने से क्या होता है अकर्म बंधक। तो हाँ समाधान की दूसरी लाइन में हाँ तीसरा के बाद कॉमा है और वहां लिखना अकर्म, अकर्म बंध के ग्रहण की अपेक्षा बंधक करना, संक्रम के बदले बंधक, सेकंड लाइन में फिर पढ़ती हूँ, यह अनुभाग विभक्ति के बारे में, यह तीसरा कॉमा लगाया वहाँ पेंसिल से करना, अकर्म बंधक के ग्रहण की अपेक्षा बंधक, यह चौथा हुआ, संक्रम के बदले बंधक करना वहां पर, तथा बंधक इस पद की फिर से आवृत्ति करने पर, प्यूरिजन हम कहते हैं रिपीट करने पर बंधक चाहिए, यानी कर्म की जगह अकर्म चाहिए। पेंसिल से करो अभी तो, और रिपीट करने पर पुनरावृत्ति, फिर से आवृत्ति है पुनरावृत्ति हम कहते हैं, रिपीट करने पर कर्म बंधक के आगे है ना, कर्म बंधक की अपेक्षा, कर्म बंधक के ग्रहण की अपेक्षा संक्रम, यह पांचवा। ओ एक शब्द एक अक्षर डाला और फिर संक्रम के बदले बंधक डाला। प्राकृत में मैंने दो तीन बार बताया, प्राकृत में नीचे से चौथी लाइन है, बंधगेति चहुतो अकम्म बंधक गहना दो, पुनो भी बंधगेति आवित्ये, बंधगे की पुनरावृत्ति करने पर कम्म बंधक गहना दो पंचमो अथाहियारो, कर्म बंध ग्रहण से पांचों अर्थाधिकार है। वहां संक्रम नहीं लिखा है परंतु ये बात पहले आ चुकी है उनको। कर्म बंध ग्रहण की अपेक्षा पांचों अर्थाधिकार है, वो पांचों अर्थाधिकार उन्होंने यहाँ गाथा सूत्र के अर्थ में बता दिया था, संक्रम लिखा है ना वहां पर। हाँ, अभी आगे पढ़ो। इस प्रकार ये पांच अर्थाधिकार है, यहाँ पर प्रकृति विभक्ति चाहिए, भिक्ति हुआ है ना, भी के बदले विभव करना, वी और भ मिला कहाँ करना है, विभक्ति, प्रकृति विभक्ति और प्रदेश विभक्ति आदि का स्वतंत्र रूप से निर्देश क्यों नहीं किया गया है, इस शंका को मन में रख करके वीरसेन स्वामी कहते हैं कि प्रकृति विभक्ति और प्रदेश विभक्ति ये दोनों स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति में अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश के बिना स्थिति और अनुभाग नहीं बन सकते, यानी जहाँ स्थिति अनुभाग है वहाँ प्रकृति प्रदेश है ही है, तथा जीणी जीण प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश भी, ये जीणा जीण है कि जीणी जीण है, जीणा जीण आया था पहले शब्द, ऊपर भी जीणा जीण है, लास्ट लाइन में जीणा जीण चाहिए, जीन और अजीन ऐसा था ना, जीना जीन, तो कहते जीना जीन प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश भी स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनके बिना जीना जीन और स्थित्यंतिक नहीं बन सकते हैं। ये सारे ही शब्द नए हैं, फिर भी इसका हमें पूरा ही उसका समझ में आएगी बात, अभी समझाएंगे विशेषार्थ में, पहले प्रस्तावना में भी आए। हाँ, जीना जीन लिखा था, निकालो कितने नंबर पर है, एक ग्रंथ के विषय की जो है ना, पेज नंबर 78 निकालो। देखो हमें वो तो पेज दोष की थी, किसको लिखना वो तो मालूम हो गया, अभी चौथे अर्थाधिकार जो है कषायर पाहुड़ का जो संक्षिप्त परिचय उसमें 15 अर्थाधिकार बताए ना उन्होंने, तो उसमें से पहला तो पेज दोष विभक्ति। पेज दोष है ना क्या, कषाय राग और द्वेष, और उसमें उदय की प्रधानता से व्याख्या है। अभी 77 पेज प्रस्तावना का। दूसरा है स्थिति विभक्ति, तो स्थिति विभक्ति है परंतु उसमें प्रकृति विभक्ति स्थिति भक्ति दोनों का वर्णन किया है। अब तीसरा है अनुभाग विभक्ति। अनुभाग विभक्ति का 78 पृष्ठ पर उसका विवरण किया जाता है कि कर्मों की जो कार्य करने की शक्ति उसको अनुभाग कहते हैं वगैरह वगैरह। हमें तो प्रदेश विभक्ति झीनाझीन स्थित्यंतिक 4 नंबर का जो है ना उसमें क्या क्या है, प्रदेश विभक्ति झीनाझीन और स्थित्यंतिक सब मिलकर चौथा है। पहले जो स्थिति विभक्ति देखा था उसी में प्रदेश विभक्ति उसी में प्रकृति विभक्ति अंतर्भूत है, और प्रदेश विभक्ति झीनाझीन और स्थित्यंतिक वो चौथे अधिकार में, उसका विवरण 78 पृष्ठ जो प्रस्तावना का उसमें है। देखो मिला 4 नंबर जहां लिखा है प्रदेश विभक्ति के 2 भेद है, मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति और उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति। अब नीचे हम पढ़ेंगे झीनाझीन वाला, किस स्थिति में स्थित प्रदेश उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदय के योग्य और अयोग्य है इसका झीनाझीन अधिकार में कथन किया है। यानी कौन से स्थिति में स्थित, यानी कौन से निषेक वाले, हाँ योग्य भी और अयोग्य भी बताया, तो कौन से निषेकों के परमाणु कौन से स्थिति में स्थित, यानी कौन से निषेकों में जो अभी है ऐसे परमाणु, प्रदेश यानी परमाणु, उत्कर्षण उनका हो सकता है अपकर्षण हो सकता है आदि जो बातें हैं। जैसे उदयावली का उत्कर्षण नहीं होगा ना, हाँ तो ये सब वहां बातें बताएंगे झीनाझीन में। जो प्रदेश उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदय के योग्य है उन्हें झीण, तथा जो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदय के योग्य नहीं है उन्हें अझीण कहा है। अब स्थित्यंतिक किसको कहना, तो नीचे स्थिति को प्राप्त होने वाले प्रदेश स्थितिक या स्थित्यंतिक कहलाते हैं। अतः उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त, जघन्य स्थिति को प्राप्त आदि प्रदेशों का इस अधिकार में कथन है। प्रदेश यानी परमाणु, कौन से निषेक में है, जघन्य में है, नीचे वाले के ऊपर वाले है, उसका यहाँ वर्णन होगा। अब हम फिर आते हैं अपने मूल विषय पर। समुत्कीर्तन यानी कथन, विस्तार से उसका कथन होता है, उसको समुत्कीर्तना कहते हैं। अभी हम आते हैं पृष्ठ संख्या अपनी 144 पर आए थे हम। एक सौ बाईस नंबर का हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ के आए वहां, स्थिति विभक्ति अनुभाग विभक्ति में वो सब अंतर्भूत हो जाता है ऐसा बताया उन्होंने, अथवा दूसरी पद्धति से कहेंगे 144 पर सेकंड लाइन, पेज दोष विभक्ति में प्रकृति विभक्ति अंतर्भूत हो जाती है। पहले क्या कहा था, वो स्थिति विभक्ति में ही प्रकृति विभक्ति अंतर्भूत, या दूसरी पद्धति से कहना है तो पेज दोष विभक्ति में अंतर्भूत होती, क्योंकि द्रव्य रूप पेज दोष और भाव रूप पेज दोष को छोड़कर प्रकृति स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। जिसे हम कहते हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म, वैसे द्रव्य पेज दोष और भाव पेज दोष, तथा प्रदेश विभक्ति झीनाझीन प्रदेश और स्थित्यंतिक प्रदेश, ये तीनों पेज दोष विभक्ति स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति में अंतर्भूत हो जाते हैं। कौन किस में अंतर्भूत होते हैं इसकी यहाँ चर्चा है, उसका अलग से वर्णन करो तो वो विषय बढ़कर बताएंगे 15 विषय, या जो वे ही जो विषय है वो अन्य में कैसे अंतर्भूत होते हैं उसका यहाँ वर्णन है। क्योंकि प्रदेश विभक्ति आदि का पेज दोष विभक्ति आदि के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है। यानी पेज दोष है तो हम कहेंगे कर्मों का उदय होता है, तो वहां भी प्रकृतियों की चर्चा करेंगे हम, तो उसमें वो गर्भित है ऐसा समझना। अथवा या अथवा कहकर और भी तीसरी बात बताते हैं, अनुभागे च इस गाथा भाग में आए हुए च शब्द से सूचित प्रदेश विभक्ति, स्थित्यंतिक प्रदेश और जिनादिश जिनाजिन प्रदेश को लेकर चौथा अर्थाधिकार होता है। यानी उसमें तो चार बातें बताई ना अभी जो हमने गाथा सूत्र पढ़ा था, पहला पेजदोष विभक्ति कहा, दूसरा स्थिति विभक्ति कहा, अनुभाग कहा और च शब्द डाला, और फिर बाद में बंदगे कहा, चार ही नाम लिखे और च में ये बाकी जो कौन से चौथा अर्थाधिकार सूचित होता है, प्रदेश विभक्ति, स्थित्यंतिक प्रदेश और जिनाजिन प्रदेश। तथा बंदगे इस पद से बंदर संक्रम इन दोनों का ग्रहण करके पांचवा अर्थाधिकार होता है। बंधक में संक्रम भी है और बंध भी है। इस प्रकार इन पांच अर्थाधिकारों में पहले मूल में कही गई पेज्जम व दोसम व इत्यादि तीन गाथाएं निबद्ध है। विशेषार्थ अधिकार सूचक पेज दोष विहत्ति इत्यादि गाथा में, अभी हमने अधिकारों के सूचना देने वाली ना कौन से अर्थाधिकार है, इसे पहले ही ये गुणधर आचार्य ने बता दिया तीसरे नंबर की गाथा सूत्र में। तो उसमें इस गाथा में पेज दोष, स्थिति, अनुभाग और बंधक ये चार नाम ही गिनाए हैं। नाम तो चार ही गिनाए हैं और एक च शब्द डाला है ना उसमें। तथा बंधक इस पद की पुनः आवृत्ति करके संक्रम का ग्रहण किया है। बंधक शब्द दो बार लिखेंगे तो बंधक और संक्रम ऐसा दोनों का अर्थ निकलता है, एक ही शब्द में से दो अर्थ निकाले उन्होंने। यहाँ बंधक इस पद में क प्रत्यय स्वार्थ में है, जिससे बंधक पद से बंध करने वाले का ग्रहण न होकर बंध का ही ग्रहण होता है। यानी क शब्द जैसे चालक चलाने वाला, वो चालक उस अर्थ में क नहीं है, तो बंध को ही बंधक ऐसा लिखा है। इस प्रकार गुणधर आचार्य के अभिप्राय अनुसार स्वार्थ में अपने ही अर्थ में, स्वार्थ यानी वो तो हाँ अपना ही अर्थ सूचित करता है, बंध बंध को ही बंधक भी कहा। इस प्रकार गुणधर आचार्य के अभिप्राय अनुसार इस कषाय पाहुड़ के पेज दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, बंध और संक्रम ये पांच अधिकार पूर्वोक्त गाथा के आधार से सिद्ध होते हैं। गाथा में तो उन्होंने ये पांच नाम बताए और छठा अर्थाधिकार वेदक है, पर गुणधर आचार्य ने इस कषाय पाहुड़ में पेज दोष विभक्ति के अनंतर प्रकृति विभक्ति का तथा अनुभाग विभक्ति के अनंतर प्रदेश विभक्ति, जिनाजिन और स्थित्यंतिक अर्थाधिकारों का वर्णन किया है। यानी उन्होंने जो गाथाएं आगे लिखी है उसमें तो उनका यानी उस अर्थ का तो प्रतिपादन आगे करके यानी करने वाले हैं या कर दिया है उन्होंने। जैसा कि पयड़ मोहनिज्जा इत्यादि गाथा से भी प्रकट होता है, आगे आने वाले गाथाओं का रेफरेंस देकर उन्होंने बताया है कि उनका इन अर्थाधिकारों का भी उन्होंने वहां कथन कर दिया है। अतः इन चारों अर्थाधिकारों का पूर्वोक्त पांच अर्थाधिकारों में से किन अर्थाधिकारों में अंतर्भाव करना उचित होगा यह प्रश्न शेष रह जाता है। यानी उन्होंने तो चार ही नाम बताए, फिर भी उसमें सभी अंतर्भूत कैसे होते हैं इसकी चर्चा यहाँ वीरसेन स्वामी ने की है। यद्यपि गुणधर आचार्य को ये स्वतंत्र अधिकार इष्ट नहीं थे, यह बात अर्थाधिकारों के नामों का निर्देश करने वाली गाथाओं से ही प्रकट हो जाती है, पर उन्होंने जो पेज दोष विभक्ति के अनंतर प्रकृति विभक्ति का और अनुभाग विभक्ति के अनंतर प्रदेश विभक्ति, झीना झीना और स्थित्यंतिक का उल्लेख किया है, इससे किनका किन में अंतर्भाव आदि करना ठीक होगा, इसका संकेत अवश्य मिल जाता है। और इसी आधार से वीरसेन स्वामी ने मूल में अंतर्भाव के 3 विकल्प सुझाए हैं। हमने देखा अभी जो पढ़ा था 121 नंबर का, 122 और 123 कषाय पाही, सॉरी ये जय धवला के, अभी जो हमने पढ़े ना अथवा अथवा कहकर उन्होंने 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई, उसको कहते विकल्प 3 बताए, 3 पर्याय बताए अलग अलग। पर्याय ने वो हम पर्याय समझते वो वाली ने, हाँ अल्टरनेटिव कौन से 3 अर्थ हो सकते हैं। पहले विकल्प के अनुसार यानी पहली पॉसिबिलिटी, वीरसेन स्वामी ने प्रकृति विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, झीनाझीन और स्थित्यंतिक इन चारों का ही स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति नामक दोनों अर्थाधिकारों में अंतर्भाव किया है, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश आदि के बिना स्थिति और अनुभाग स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। यानी पहले नाम लेते हो स्थिति प्रकृति प्रदेश सबको अलग अलग गिना है, अब यहाँ उसी में अंतर्भूत है ऐसा बता देते हैं। दूसरा विकल्प अथवा कहकर उन्होंने जो बताया था उसके अनुसार प्रकृति विभक्ति का पेज दोष विभक्ति में अंतर्भाव किया है, क्योंकि द्रव्य और भाव रूप पेज दोष को छोड़कर, यानी द्रव्य और भाव रूप ये जो राग और द्वेष है कषाय है इनको छोड़कर प्रकृति स्वतंत्र नहीं पाई जाती है, तथा शेष तीनों का स्थिति और अनुभाग विभक्ति में अंतर्भाव किया है। ये 122 में हमने देखा था, 144 पृष्ठ पर जो 122 नंबर है उसमें ये विकल्प बताया था। अब तीसरा विकल्प अथवा कहकर वो 123 में बताया था। तीसरे विकल्प के अनुसार वीरसेन स्वामी ने मूल व्यवस्था में ही थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। इस व्यवस्था के अनुसार वीरसेन स्वामी प्रकृति विभक्ति को तो पेज दोष विभक्ति में अंतर्भूत कर लेते हैं, पर शेष 3 को किसी में भी अंतर्भूत न करके उनका अनुभागे च यहाँ आए हुए च शब्द के बल से चौथा स्वतंत्र अर्थाधिकार मान लेते हैं। च शब्द ना और तो उसमें ये बातें उसमें गर्भित है, ऐसे चौथा अर्थाधिकार उन्होंने सेपरेट नाम दिया उसको, तथा बंधक पद की पुनः आवृत्ति न करके बंध और संक्रम इन 2 के स्थान में बंधक नाम का एक ही अर्थाधिकार मानते हैं। देखो जब 4-5 करने हैं तो बंधक में से 2 निकाले, एक बंधक और एक संक्रम, और यहाँ च शब्द से चौथा अर्थाधिकार निकाला और बंधक एक ही शब्द से 2 अधिकार बता दिया। इन 3 विकल्पों में से पहले 2 विकल्पों के अनुसार अर्थाधिकारों के पूर्वोक्त 5 नामों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर तीसरे विकल्प के अनुसार अर्थाधिकारों के उनके नाम कैसे हो गया अभी, पेज दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, फिर चौथे का नाम उन्होंने बता दिया प्रदेश विभक्ति, झीनाझीन, स्थित्यंतिक, ये पूरा मिलकर एक नाम कर दिया, और 5वां बंध, ये 5 नाम हो जाते हैं। इस नाम परिवर्तन का कारण पेज दोष विहते इत्यादि गाथा में 5वें अर्थाधिकार के नाम के स्पष्ट उल्लेख का न होना है। मैंने मूल में गुणधर आचार्य ने 5वां नाम स्वतंत्र रूप से नहीं बताया है। जब बंदगेच इस पद की पुनः आवृत्ति करते हैं तब संक्रम नाम का स्वतंत्र अर्थाधिकार बनता है। बंधक की जो पुनरावृत्ति करेंगे तो 5वें का नाम संक्रम रखेंगे, और जब बंधगे च इस पद की पुनः आवृत्ति न करके अनुभागे च में आए हुए च शब्द से अनुक्त का ग्रहण करते, अनुक्त ने जो नहीं बताया है उसका ग्रहण करना च शब्द से, तब अनुभाग विभक्ति और बंधक, ये तीसरे और 5वां है ना, अनुभाग विभक्ति तीसरा है, बंधक 5वां है, उनके बीच में आए हुए प्रदेश विभक्ति, झीनाझीन और स्थित्यंतिक इन 3 का एक स्वतंत्र अर्थाधिकार सिद्ध हो जाता है, उसका एक अलग से चैप्टर होगा, उसका अर्थाधिकार होगा। इनमें से झीनाझीन और स्थित्यंतिक को छोड़कर पेज दोष विभक्ति आदि का अर्थ सुगम है। झीनाझीन और स्थित्यंतिक ये दोनों अर्थाधिकार प्रदेश विभक्ति नामक अर्थाधिकार के चुलिका रूप से ग्रहण किए गए हैं। जीना जीन में, अभी यहाँ बताते हैं अर्थ, किस स्थिति में स्थित प्रदेश पुंज उत्कर्षण तथा अपकर्षण के योग्य या अयोग्य है, इसका विशदता से वर्णन किया गया है। अभी हमने प्रस्तावना में से इसका अर्थ देखा था। किस स्थिति में स्थित का अर्थ क्या किया था? हाँ याद है जयबेन, आपको याद है स्थिति का अर्थ क्या करना है? निषेक, कौन से निषेकों में जो प्रदेश है उनका उत्कर्षण अपकर्षण क्या होता है उसको कहेंगे। किस स्थिति में स्थित, निषेक रचना जो होती है ना, हमने देखा आड़ी लाइन हम हमेशा बताते हैं, किसी ने इतनी स्थिति बांधी थी इस कोड़ा कोड़ी सागर की, उसमें से पहला निषेक, दूसरा निषेक, चौथा निषेक, पांचवा निषेक, जो ऊपर तक के एक एक समय वाला एक एक निषेक होता है उसी को स्थितियां भी कहते हैं। तो कौन से निषेक में कौन से परमाणु है, वो उनका क्या क्या हो सकता है अपकर्षण उत्कर्षण, उसको यहां बताया है। तथा स्थिति या स्थित्यंतिक नामक अधिकार में, अर्थाधिकार में उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र कितने हैं? प्रदेशाग्र ने प्रदेशों की संख्या, ये प्रदेशों परमाणु, प्रदेशाग्र ने एक परमाणु। तो कौन से स्थिति में, उत्कृष्ट स्थिति में कितने परमाणु हैं? जघन्य स्थिति में कितने परमाणु हैं? जघन्य स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र कितने हैं? इत्यादि का वर्णन किया गया है। जब बंद होता है या सत्ता में पड़े परमाणु जो है उनकी जो निषेक रचना है, पहले निषेक में परमाणु कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कैसे, कितने कम होते चले जाते और अंतिम निषेक में कितने, इसका बिल्कुल गणित है। तो ये यहां बताएंगे कौन से निषेक में कितने परमाणु हैं। ऊपर कहे गए तीन विकल्पों के अनुसार पांचों अर्थाधिकारों का सूचक कोष्ठक, ये पहला विकल्प जो है उसमें पांच अर्थाधिकार ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे अभी हम, पेज दोष विभक्ति, फिर स्थिति विभक्ति, उसी में प्रकृति विभक्ति अंतर्भूत है, तीसरा अनुभाग विभक्ति है, उसी में प्रदेश विभक्ति, जीना जीन और स्थित्यंतिक भी अंतर्भूत गर्भित है, चौथा बंद है और पांचवा संक्रम है। वो बंधक नाम में से इन्होंने दो निकाले, एक बंधक नाम दिया था ना गाथा में, उसमें से दो निकाले। अब जो दूसरा विकल्प है उसमें पेज दोष विभक्ति में ही प्रकृति विभक्ति, वो क्रू रह गया वहां पर, उसी में प्रकृति विभक्ति अंतर्भूत हो जाती है। दूसरा तो स्थिति विभक्ति नाम है ही मूल में गाथा में, तीसरे अनुभाग विभक्ति में प्रदेश विभक्ति, जीना जीन और स्थित्यंतिक उसी में ले लिया, और चौथा पांचवा बंदर संक्रम वैसा ही लिया। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है, तीसरा विकल्प है, उसमें पेज दोष विभक्ति में प्रकृति विभक्ति लिया, वो व का वी करो, फिर स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति और च शब्द में से उन्होंने अर्थ निकाला चौथे का, प्रदेश, जीना जीन और स्थित्यंतिक विभक्ति, और पांचवा तो बंद वहां तो था ही। एक सौ इक्कीस बाईस तेईस, हाँ ये वो पहले वो 121 22 123 रूप से वहां बता चुके थे। हाँ ये जो 121 22 23 है ना, ये नंबर लेफ्ट साइड में देखा, देखो ये तो जय धवला की जो साइन है, डबल एस टाइप ऐसे साइन है ना, वो 121 22 23 यानी पांचवा जो लिखा है बंध, उसमें दोनों अंतर्भूत है, बंध और संक्रम, पर उसका नाम बंध है, और पहले दो विकल्पों में बंधक और संक्रम को अलग अलग बताया था। ये विषयों का क्लासिफिकेशन कैसा है, वो विषय तो पूरे के पूरे आने वाले हैं, ग्रंथ में तो सब आने वाला है, परंतु उनके कितने अधिकार बताए हैं तो ये अधिकारों के कैसे उन्होंने विभाजन किया है उसकी बात है यहाँ पर। जैसे प्रवचन सार में भी है ना, ज्ञेय अधिकार है, ज्ञान अधिकार है, और फिर वो चरणानुयोग संबंधी चूलिका है। जैसे जिनाचार्य ने उसको अलग तरीके से उसको विभक्त किया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो चार है वो क्या, कौन सी गाथा है, किसमें से है? मूल कषाय प्रावृत गुणधर भट्टारक ने लिखी हुई ये चौथी गाथा सूत्र है ये। और फिर उसको उसके नीचे 124 लिखा है, वो क्या है? वीरसेन आचार्य ने जयधवला टीका लिखी। चत्तारि वेदयम् मिदु उवजोगे सत्तहोंति गाहाओ सोलसय च उठाणे व्यंजने पंचगाहाओ। वेदक नाम के छठवें अर्थाधिकार में, यानी पांच अर्थाधिकार तो बता चुके हैं, 15 अर्थाधिकार है ना इसमें, तो कौन से अर्थाधिकार है उसका वर्णन स्वयं गुणधर भट्टारक कर रहे हैं। तभी इस गाथा में आगे के अर्थाधिकारों के नाम बताएंगे। पहले पांच समझ में आ गए ना? थोड़ा थोड़ा भले रिपीट नहीं कर सकते, परंतु उनको तीन अलग अलग पद्धति से हमने देखे। एक तो पेज दोष, दूसरा है स्थिति, तीसरा अनुभाग, चौथे को प्रदेश जीना जीन और सित्यंतिक, अभी हम उसको ले लेंगे, और पांचवे को बंधक कहा। अभी उसमें जो कोई वेरिएशन है वो हम बहुत विस्तार से समझ चुके। अभी छठा अधिकार जो है कौन सा है उसके अभी नाम और संख्या वो सब बताएंगे यहाँ पर। वेदक नाम के छठवें अर्थाधिकार में चार गाथाएं। हमेशा ये जयसेन आचार्य की टीका में भी ऐसा ही आता था, पहले क्या हो चुका है और आगे क्या आने वाला है, तो इतने गाथाओं में ये विषय, फिर इतने गाथाओं में ये विषय ऐसा। तो यहाँ भी आगे आने वाले गाथाओं, कितने गाथाओं में कौन सा विषय लिखा है वो यहाँ बता रहे। वेदक नाम के छठवें अर्थाधिकार में चार गाथाएं, उपयोग नाम के सातवें अर्थाधिकार में सात गाथाएं, ऊपर लिखा ना चत्तारी वेदयम्मी, वेदयम्मी ने वेदक नाम के अर्थाधिकार में चार गाथाएं, उपयोग नाम के अर्थाधिकार में सात गाथाएं, वो जो होगे सत्तहोंती गाहाओ, गाहाओ ने गाथाओ। अब कहते चतुस्थान नाम के चौठाने लिखा है ना ऊपर, आठवें अर्थाधिकार में 16 गाथाएं, और व्यंजन नाम के व्यंजने, व्यंजन नाम के नौवे वे करना अर्थाधिकार में पांच गाथाएं निबद्ध है। कौन से विषय में कितनी गाथाएं आने वाली है उसका भी यहाँ विवरण पूरा लेखा जोखा दे रहे हैं। जैसे आजकल हम वो तो इंडेक्स लिखते ना अनुक्रमणी का, या जैसे गोमट सार में वो पूरी सूचनिका लिखी है समय ज्ञान चंद्रिका में स्वयं टोडरमल जी ने। आजकल जैसे प्रस्तावना लिखते, प्रस्तावना में भी मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं, परंतु सूचनिका में तो बिल्कुल एक एक चैप्टर में कौन कौन सा विषय आने वाला है, तो उतना हम पढ़ेंगे ना तो कौन सा विषय कहाँ ढूंढना वो भी आसान हो जाता है। या जो नया पढ़ने वाला है उसको पता चलता है कि अभी क्या क्या विषय इसमें समझाने वाले हैं। इसमें भी हमने देखा ना, ये तो ये मूल की परंपरा ही चली आई है ऐसी। अब इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते हैं। अभी ये वीरसेन स्वामी यहाँ लिख रहे हैं, वह इस प्रकार है। वेदक नाम का छठवा अर्थाधिकार है, उसमें चार सूत्र गाथाएं हैं। वे कौन सी है? कदि आवलियम पविष्यन्ति, इस गाथा से लेकर, ये गाथा के स्टार्टिंग के शब्द यहाँ बता दिए। जो जम शंका मेदिय जम वंददी, इस गाथा तक चार गाथाएं हैं। यहाँ तक छह अधिकारों से संबंध रख वंददी, वो दिख रहे हैं वंददी करना उसका। यहाँ तक छह अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ सात हो जाता है। उपयोग नाम का सातवां अर्थाधिकार है। देखो पूरा अर्थाधिकार कितनी कम गाथाओं में उन्होंने समेट लिया है। मूल तो 16,000 मध्यम पदों को 180 में, तो उन्होंने 15 अर्थाधिकार बनाए. अब आगे 233 जो रचना है उसकी बात बाद में करेंगे. उपयोग नाम का सातवां अर्थाधिकार है. इस अर्थाधिकार में 7 सूत्र गाथाएं निबद्ध हैं. वे कौन सी है? केवचिरम उवजोगो, इस गाथा से लेकर उवजोग वग्गणाही अविरहिदम, इस गाथा तक 7 गाथाएं हैं. यहां तक 7 अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 14 होता है. चतुस्थान नाम का 8वां अर्थाधिकार है. इस अधिकार में 16 गाथाएं हैं. वे कौन सी, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि कोहो चौ विहो उत्तो, इस गाथा से लेकर असन्नी खलु बंधदी, इस गाथा तक 16 गाथाएं हैं. यहां तक 8 अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 30 होता है. व्यंजन नाम का 9वां अर्थाधिकार है. इस अधिकार से संबंध रखने वाली 5 गाथाएं हैं. वे कौन सी है? कोहो या कोप रोसो, इस गाथा से लेकर सासद पत्थन, इस गाथा तक 5 गाथाएं हैं. यहां तक 9 अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 35 होता है. ये 6वें नंबर का अर्थाधिकार, उसका नाम है वेदक. 7वां है उपयोग, 8वां है चतुस्थान और 9वां है व्यंजन. व्यंजन का अर्थ देखना है. देखो, निकाले प्रस्तावना. अभी हम 78 को छोड़ा था. जो जो नाम पढ़ेंगे ना, उसका अर्थ देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे. 79 पृष्ठ पर देखो, बंद का भी अर्थ देखा था हमने. देखो नीचे पढ़ो, 78 पर 5वें नंबर का. बंधक के बंध और संक्रम दो प्रकार भेद है. मिथ्यात्वादी कारणों से कर्म भाव के योग्य कार्मण पुद्गल स्कंधों का जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को बंध कहते हैं. ये बंध की परिभाषा बताई. देखो चौथी लाइन. इस प्रकार बंधे हुए कर्मों का यथा योग्य अपने अवांतर भेदों में संक्रांत होने को संक्रम कहते हैं. जो उत्तर प्रकृतियों का आपस में जो कुछ या यथा योग्य जिसमें संक्रमण होता है उसको संक्रमण कहते हैं. अवांतरण सब डिविजन्स. देखो नीचे से दूसरी लाइन. अन्य भेद यानी चारित्रम होने के वो अवांतर भेद है ना. क्रोध का मान में हो जाना या लोभ का माया में हो जाना, एक भेद का दूसरे भेद रूप हो जाना. नीचे से दूसरी लाइन उसी में देखो. नवीन बंध को अकर्म बंध और बंधे हुए कर्मों के परस्पर संक्रांत होकर बंधने को कर्म बंध कहते हैं. अभी हम वेदक की बात पढ़ेंगे. 79 पृष्ठ पर 6 नंबर पर इस अधिकार में उदय और उदीरणा का कथन है. वेदक यानी जीव उसका वेदन करता है. वेदन करता है ना, उसका निमित्तपना बनता है जीव के भावों के साथ. कर्मों का अपने समय पर जो फलोदय होता है उसे उदय कहते हैं. उसको विपाक भी कहते हैं ना, विपाक होना, उदय होना, उसका फल मिलना. और उपाय विशेष से यानी विशिष्ट उपाय से असमय में ही उनका जो फलोदय होता है उसे उदीर्णा कहते हैं. यानी हमने अभी उसकी स्थिति लंबी थी और फिर उदयावले में आकर जुटते और नए यानी जल्दी उदय में आ जाते, उसको उदीर्णा कहते हैं. चूंकि दोनों ही अवस्थाओं में कर्म फल का वेदन यानी अनुभव करना पड़ता है, इसलिए उदय और उदीर्णा दोनों को ही वेदक कहा जाता है. इस अधिकार में 4 गाथाएं हैं. जिनके द्वारा ग्रंथकार ने उदय उदीर्णा विषयक अनेक प्रश्नों का समवतार किया है, यानी उसको बताया है, और चूर्णी सूत्रकार ने उनका अवलंबन लेकर विस्तार से विवेचन किया है, चूर्णी सूत्रकार ने, और फिर वीरसेन स्वामी ने उस पर जय धवला टीका लिखी। दूसरी गाथा के द्वारा प्रकृति उदय, प्रकृति उदीर्णा और उनके कारण द्रव्यादि का कथन किया है, यानी प्रकृति में उदय उदीर्णा लगाए। ये उदय उदीर्णा हमने देखी थी अभी धवला के 16वें भाग में, 15-16 में, प्रकृति का उदय, प्रदेशों का उदय, स्थिति का उदय, अनुभव का उदय, उदीर्णा में भी चारों लगाए थे। दूसरी गाथा के द्वारा स्थिति उदीर्णा, देखो आई ना ये बात, अनुभाग उदीर्णा, प्रदेश उदीर्णा तथा उदय का कथन किया गया है। तीसरी गाथा के द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक, प्रकृति संबंधी, स्थिति संबंधी, अनुभाग संबंधी और प्रदेश संबंधी भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित और अवक्तव्य का कथन किया है। ये किसको कहना भुजाकार, मंदाबिन याद है आपको? भुजाकार ने क्या कहना, जैसे हम कहेंगे अनुभाग की बात करेंगे हम, हाँ, तो पहले जितना अनुभाग का उदय है, दूसरे समय में अनुभाग का उदय ज्यादा होना, उसको कहेंगे भुजाकार। अब स्थिति में भी ऐसा है ना, उदीर्णा, कितने निषेकों में से उदीर्णा होती थी, अधिक निषेकों में से होने लगी, तो हम कहेंगे वो भुजाकार हो रही। संक्रम वगैरह सभी में ऐसा है लेना, भुजाकार शब्द जब आता है तो पहले जितना था उससे बढ़ जाना, उसको भुजाकार कहेंगे। अल्पतर ने पहले है उससे घटना दूसरे समय में, उसको अल्पतर कहेंगे। अवस्थित, उतने का उतना रहना, उसको अवस्थित कहेंगे। और अवक्तव्य, हाँ, पहले नहीं था और अब हो रहा है, जैसे हम कहें पहले उदय नहीं था, असाता का उदय चल रहा था तो साता का नहीं था, अब साता का होने लगा, तो हम कहेंगे वो अवक्तव्य है। ऐसा ही हर में समझ, हर एक में, अर्थात यह बतलाया है कौन बहुत प्रकृतियों की उदीर्णा करता है और कौन कम प्रकृतियों की उदीर्णा करता है, तथा प्रति समय उदीर्णा करने वाला जीव कितने समय तक निरंतर उदीर्णा करता है आदि, यानी ये जो सारी बातें विस्तार से वहां बताएंगे। चौथी गाथा के द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक बंध, संक्रम, उदय, उदीर्णा और सत्व, सत्व ने सत्ता में पड़ा रहना, उसके अल्प बहुत्व का कथन करेंगे, कथन किया है। यह अधिकार भी विशेष विस्तृत है। अब उपयोग ये उपयोग अधिकार में क्या बताएंगे, देखो इस अधिकार में क्रोधादि कषायों के उपयोग का स्वरूप बतलाया गया है। इसमें 7 गाथाएं हैं जिनमें बतलाया गया है कि एक जीव के एक कषाय का उदय कितने काल तक रहता है, कितना रहेगा, 2-4 घंटे रहेगा कि नहीं, अंतर्मोता, किस जीव के कौन सी कषाय बार बार उदय में आती है, ये तो गति की अपेक्षा भी हम कहेंगे, नर गति में किसका, वहां तो हमने ऐसा भी पढ़ा था, वहां जन्मते ही कौन सा होता है, वहां पहले में पहले देवों में कौन से कषाय का ज्यादा है, किसका काल ज्यादा है, किसको ज्यादा बारंबार होता है, लोभ की वहां ज्यादा अधिकता है आदि। हाँ, एक भव में एक कषाय का उदय कितनी बार होता है और एक कषाय का उदय कितने भवों तक रहता है ये सभी चर्चा वहां होगी। जितने जीव वर्तमान में जिस कषाय में विद्यमान है, क्या वे उतने ही पहले भी उसी कषाय में विद्यमान थे और क्या आगे भी विद्यमान रहेंगे, एट अ टाइम कौन से कषाय में कितने जीव होंगे, फिर दूसरे समय में उतने ही रहेंगे कि क्या होगा उसका, आदि कषाय विषयक बातों का विवेचन इस अधिकार में किया गया है। ये फुल स्टॉप, प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए वहां पर, पेन कहां गया है? हाँ, अभी चतुस्थान, घाती कर्मों में शक्ति की अपेक्षा, अभी ये जो हमने देखा ना अनुभाग में जो शक्ति है उसकी अपेक्षा घाती कर्म अघाती कर्म ऐसे हम उसके अलग अलग नाम दिए हैं, शक्ति की अपेक्षा लता आदि रूप चार स्थानों का विभाग किया है। ये लता आदि में नाम याद है आपको शोभावते? हाँ हमने लिया था लता दारू अस्थि और शैल, दारू को ही काष्ट कहते हैं। अच्छा है, अमेरिका में सुना था, अभी याद आया थोड़ा थोड़ा। घाती कर्मों में शक्ति की अपेक्षा लता आदि रूप चार स्थानों का विभाग किया जाता है, उनमें क्रमशः एक स्थान द्विस्थान त्रिस्थान और चतुस्थान कहते हैं। इस अधिकार में क्रोध मान माया और लोभ कषाय के उन चारों स्थानों का वर्णन है, इसलिए इस अधिकार का नाम चतुस्थान है। ये स्थानों की अपेक्षा चार नाम लिए, कषाय के शक्ति की अपेक्षा चार नाम याद है क्रोध के, वो नीम कांजे तो आघाती के है, आघाती के अशुभ कर्मों का नाम है। देखो अभी आपने निकाला है तो उसके नाम पहले देखते हैं। हमने अभी घाती के नाम देखे, घाती में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय चारों के ही जो स्पर्धक है अनुभाग की अपेक्षा, उनके नाम मंद से तीव्रता की ओर कैसे, लता दारू अस्थि और शैल। अघाती के दो विभाग है, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, जिसको प्रशस्त और अप्रशस्त भी कहते हैं। प्रशस्त प्रकृतियों के नाम गुड़ शर्करा खांड और अमृत, ये चार नाम, और जो पाप प्रकृतियां उनके नाम नीम कांजीर विष और हलाहल। तो ये तो हमने देखे। अब शक्ति की अपेक्षा, शक्ति का अर्थ क्या होता है, ये तो स्पर्धकों की बात हमने देखी। अब क्रोध का जो अलग अलग टाइप के क्रोध है तो उसमें शक्ति कितनी है, उत्कृष्ट शक्ति है कि अनुत्कृष्ट है कि अजगन्य के जगन्य है, तो उसके भी नाम है। हाँ 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 बरोबर है। पत्थर के क्या ले, शिला भेद कहा, शिला भेद, दूसरा हाँ पृथ्वी भेद, तीसरा धूली रेखा, हाँ, और चौथा जल रेखा, हाँ, जल रेखा पान नहीं नहीं वो तो हम हाँ यहाँ तो शिला भेद और पृथ्वी भेद ही आया है उसमें, हाँ, शिला भेद पृथ्वी भेद धूली रेखा उसमें रेखा करना और जल रेखा, ये क्रोध के चार हुए, ऐसे हर एक के बताए हैं, मान के माया के लोभ के, और हर एक के नाम अलग अलग है। ये माया में भी वो आया था ना कि जैसे वो वेणु का मूल है या मेंढे का सींग है, ऐसे ऐसे उसमें बातें, उसका नाम दिया था, ये सब आएगा अभी, इसीलिए ये चार्ट मंगवाए हैं। ये तो कोरे कागज है, अभी इस पर चार्ट करेंगे, अभी समय ज्ञान चंद्रिका के शिविर में इस पूरा लेने वाले हैं। सब सब बहुत सारे विषय है, पूरी पुस्तक ली जाएगी और उसका बिल्कुल महत्व की बातें उसमें ना। इसमें तो बहुत विस्तार से वर्णन है। देखो ये आदि कषाय विवेक, ये चतुस्थान चल रही थी बात, चार स्थानों का वर्णन, इसलिए अधिकार का नाम चतुस्थान है। तीन लाइन हो गई चतुस्थान में से, इसमें 16 गाथाएं हैं। पहली गाथा के द्वारा क्रोध मान माया और लोभ के चार चार प्रकार होने का उल्लेख किया है। दूसरी तीसरी और चौथी द्वारा गाथा के द्वारा वे प्रकार बतलाए हैं, पत्थर पृथ्वी रेत और पानी में हुई लकीर के समान क्रोध चार प्रकार का होता है। क्या इसी को हम अनंतानुबंधी आदि कह सकते हैं? हाँ नहीं समझे, मेरा प्रश्न क्या था, क्या हम ऐसा कह सकते हैं पत्थर वाली जो है पृथ्वी वाली है रेत और पानी में, क्या इसको हम अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन रूप क्रोध कह सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि ये तो तीव्रता और मंदता के जो भेद है अनंतानुबंधी में भी ऐसे चार भेद पाए जाएंगे। ये नहीं उसका और इसका संबंध है ऐसा नहीं लगाना। हाँ नहीं 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 वो बताते हैं वो बात अलग है। अभी हमें तो चरणा करणानुयोग के आधार से उसके नाम देखने, ये तो समझाने के लिए। जैसे जल के ऊपर खींची हुई तो जैसे मुनियों के मंद होते हैं, ये समझाने का तरीका है। परंतु उन कषायों की जाति अलग है। अनंतानुबंधी किसको कहना, ये तीव्र है इसके अनंतानुबंधी नहीं। ऐसे मंद वाले भी अनंतानुबंधी के हो सकते हैं जो शुक्ल लेशा वाले परिणाम हो गए। हाँ परंतु फिर भी जाति क्यों अनंतानुबंधी, सम्यक्त्व नहीं होने देती इसलिए उसको अनंतानुबंधी कहे। मंद है इसलिए अनंतानुबंधी नहीं है बात नहीं है, ऐसी मान्यता पाई जाती है। ये जैनियों में पाई जाती है, कहते हम तो जैनी है ना, तो हमें तो ऐसे तीव्र कषाय नहीं होते, जैसे मारकाट के परिणाम नहीं होते, मांस मदिरा पीने के परिणाम होते नहीं होते, तो हमारे अनंतानुबंधी है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये राग में जो एकत्व बुद्धि पड़ी है वो सम्यक तो नहीं होने दे रही, वही अनंतानुबंधी है। हम तो बाह्य से कितनी शक्ति, बहुत तीव्र क्रोधी है तो हाँ ये अनंतानुबंधी है, और ये मंद है, एकदम मंद है, उसको क्रोध होता ही नहीं है, ये बहुत अच्छा है, भला है, उससे वो सम्यक भी है ये बात नहीं सिद्ध होती। सम्यक तो अलग बात है, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाना अलग बात है, या मंद हो जाना अलग बात है, यानी उसकी जाति अलग अलग है। नहीं कभी हम आगे पढ़ेंगे नीचे से चौथी लाइन, पत्थर का स्तंभ, हड्डी, लकड़ी और लता के समान चार प्रकार का मान होता है आदि। अब ये जो यहां बताए हैं वो अनुभव, लता दारू का अस्थि और शैल, उसके ये बातें बताई हैं। चार कषायों के इन 16 स्थानों में कौन किससे अधिक होता है, किससे हीन होता है, ये पहले जो बताया ना, पत्थर पृथ्वी रेत और पानी, उसकी लकीर, वो तो शक्ति के स्थान हुए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य जघन्य, और आगे जो बताए हैं वो तो स्पर्धकों के नाम बताए हैं, तो उसकी अपेक्षा उसको भी समझाएंगे। कौन स्थान सर्वघाती है, कौन स्थान देशघाती है, जैसे हम कहते ना लता तो देशघाती है, और जो दारू वाला है वो अनंतवा भाग है वो देशघाती है, और ऊपर सभी अनंत बहुभाग और अस्थि और शैल वो सारे सर्वघाती है। क्या सभी गतियों में सभी स्थान होते हैं या कुछ अंतर है, ये सब चर्चा आने वाली है। हो किस स्थान का अनुभव न करते हुए किस स्थान का बंध होता है, यानी उसके उदय में भी नहीं है फिर भी बंद होता है, ऐसे कोई स्थान हो गए कि नहीं हो गए, और किस स्थान का अनुभवन नहीं करते हुए किस स्थान का बंद नहीं होता है, आदि बातों का वर्णन इस अधिकार में है। ये कषायों के ऊपर घटित रहते हैं, या हम ज्ञानावरण आदि की बात करेंगे, जैसे ज्ञानमति ज्ञानावरण का है, देशघाती का उदय चलता है, अनुभव किसका है, देशघाती का है, और बंद किसका हो रहा है, स्पर्धकों का। पांचों ज्ञानावरण तो बनते ही है, परंतु मति ज्ञानावरण के सर्वघाती बन रहे ना हर समय, प्रकृति देशघाती है, उसके स्पर्धक देशघाती और सर्वघाती सभी है, सर्वघाती का उदय कभी नहीं होगा परंतु बंध अवश्य होगा। तो इस तरह से ये बातें हैं, उसकी चर्चा भी कषायों के ऊपर ये सब लगाएंगे, अन्य कर्मों की बात नहीं लगेंगे। हमने अभी एक जो 9वां नंबर व्यंजन नाम यहाँ देखा था अभी अभी, उसका अर्थ करते यहाँ पर। इस अधिकार में 5 गाथाओं के द्वारा क्रोध, मान, माया और लोभ के पर्यायवाची शब्दों को बतलाया है। पर्यायवाची यानी उसी को अन्य कौन सा नाम लेकर हम बता सकते हैं, जैसे क्रोध के क्रोध, रोष, द्वेष आदि, मान के लिए मद, दर्प, स्तंभ आदि, माया के निकृति, वंचना, हम कहते हैं छल आदि शब्द आता है ना, अभी हमने पढ़ा था उसको, और लोभ के काम, राग, निदान आदि। इनके द्वारा ग्रंथकार ने यह बतलाया है किस किस कषाय में कौन कौन बातें आती है, इन पर्याय शब्दों से प्रत्येक कषाय का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। व्यंजन का अर्थ ही होता है शब्द। ये व्यंजन शब्द कभी पहले सुना है? स्वर व्यंजन में जो व्यंजन है उसका अर्थ अलग होता है, वो अक्षरों के लिए कहा है। ये कसट तपय वगैरह उसको व्यंजन कहते हैं। अच्छा, आपको खाने के पदार्थ रूप व्यंजन वो याद आ गए। हाँ हाँ, अच्छा है ना, ऐसा ही याद करना है, शब्दों के अर्थ ऐसे ही तो याद में लेते। दूसरा, हमने जो पृथक्त्व वितर्क, अच्छा व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय, प्रदेशत्व गुण के पर्याय को या लंबे काल तक चलने वाली पर्याय को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये तीसरा एक अर्थ है। एक व्यंजन शब्द आता है व्यंजन से, व्यंजनांतर ऐसा, पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान में द्रव्य से द्रव्यांतर, योग से योगांतर, और उसमें व्यंजन से वो शब्द, श्रुत का शब्द लेकर शब्द से शब्दांतर या व्यंजन से व्यंजनांतर ऐसा कहते हैं। शब्द के लिए व्यंजन ऐसा कहते हैं, व्यंजन यानी ये शब्द। हाँ हाँ, क्योंकि श्रुत का कोई शब्द लिया ना, उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर दूसरे किसी शब्द पर विचार करेंगे तो उसको व्यंजनांतर कहते हैं। व्यंजन का एक अर्थ शब्द हो गया। हमने स्वर और व्यंजन में अक्षर को, जो क च ट त प आदि जो है बारह खड़ी है ना हमने के, क ख ग घ ङ, ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरा अर्थ अभी आपने बताया, खाद्य पदार्थों को भी व्यंजन कहते हैं, और दूसरा वो प्रदेशत्व गुण के पर्याय को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। हाँ, एकार्थवाची शब्द, एक ही अर्थ के अनेक शब्द, ऐसा भी होता है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ, नहीं नहीं उसको नहीं व्यंजन कहते। दो प्रकार से कथन पद्धति से, अभी हमने जो व्यंजन को याद किया तो एक शब्द के अनेक अर्थ गए, और यहाँ क्या बता रहे, क्रोध इस अर्थ में अनेक शब्द लिए, अलग नाम, इसको कहते पर्यायवाची नाम या एकार्थवाची शब्द, उसको यहाँ व्यंजन अधिकार में बताया है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे गो शब्द है, दूसरा गाय भी होता है, गमन भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं, जानना भी अर्थ होता है, तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ हुए। अब यहाँ क्या कहते हैं, एक ही अर्थ बताने वाले अनेक शब्द अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ज्ञान के लिए हम कौन कौन से शब्द आते, आपको मालूम है, जानना, ये तो परिच्छित्ति आता है, अधिगम आता है, ग्रहण करना ये शब्द आता है, ज्ञप्ति यानी ज्ञान ज्ञप्ति वो सब उसमें, हाँ बोध होता है, प्रबोध होता है, तो ये सारे जो है एकार्थवाची शब्द। यहाँ तो क्रोध मान माया लोक पर ही सब घटित कर रहे हैं, क्योंकि पूरा अधिकारी पेज दोष वाला है ना, तो हमारे क्रोध मान माया लोक पक्के होने नहीं, उस संबंधी जानकारी पक्की होगी। तो ये नौ नाम हमने देखे, देखो इसमें से अभी जहां हम पढ़ रहे हैं ना नौ नाम, पहला तो पेज दोष विभक्ति है, दूसरा 77 पृष्ठ स्थिति विभक्ति, तीसरा अनुभाग विभक्ति, चौथा प्रदेश विभक्ति झीना झीन और स्थित्यंतर, पांचवा बंधक, छठा वेदक, सातवा उपयोग, आठवा चतुस्थान, नौवा व्यंजन, वे नौ अर्थाधिकार हो गए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर यहाँ आगे आएंगे बाद में। ये अभी अपना गाथा सूत्र हो गया, 147 वाला ये हमने पढ़ा नहीं था। हाँ, उपयोग नाम का हमने देखा था, वे कौन सी है पूछने पर चतुस्थान की भी हो गया, व्यंजन तक। हाँ हाँ, वही तो पांचवा अभी पढ़ना है ना, वहां तक पढ़ा था हमने, कुल गाथाओं का जोड़ 35 होता है, यहाँ तक पढ़ा है ना। ऊपर गाथा पढ़ेंगे, दंसन मोह सुवसामणाये पन्नरस होंति गाहाओ पंचे वसुत्त गाहा दंसन मोह सखवणाये। दर्शन मुनि की उपशामना नामक 10वें अर्थाधिकार में 15 गाथाएं हैं और दर्शन मुह की क्षपणा नामक 11वें अर्थाधिकार में 5 ही सूत्र गाथाएं हैं। ये तो इतने सूत्र गाथाओं में समा दिया और हमने तो क्षपणासार में 150 पेज खाली 9वें गुणस्थान के लिए थे। तो ये गाथा बनाने वालों की कितनी कमाल है कि उसमें सब कुछ माल आ गया, इतनी इतनी गाथाओं में सब बता दिया। हाँ, पहले हम देख लेते 80 पेज पर जहां छोड़ा था, प्रस्तावना पृष्ठ 80। देखो, दर्शन मोहोपशमना 10 नंबर दिया था। इस अधिकार में दर्शन मोह कर्मणि की उपशमना का वर्णन है। दर्शन मोह की उपशमना के लिए जीव तीन करण करता है। करण यानी परिणाम, करता है ये पद्धति है कथन की, करता है ने उसके होते हैं। क्योंकि द्रव्यान योग की भाषा में हम बोलेंगे तो जीव तो उस तत्व विचार में इतना मग्न है कि उसके दर्शन मोह की उपशमना हो जाती है, परंतु यहाँ निमित्त से कथन किया जाता है तो वो करता है कहेंगे, या तीन करण मानता है ऐसा भी कहेंगे। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। प्रारंभ में ग्रंथकार ने चार गाथाओं के द्वारा अधप प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर नीचे की और ऊपर की अवस्थाओं में होने वाले कार्यों का प्रश्न रूप में निर्देश किया है। जैसे पहली गाथा में प्रश्न किया गया है कि दर्शन मोह की उपशमना करने वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं, उनके कौन योग, कौन कषाय, कौन उपयोग, कौन लेशा और कौन सा वेद होता है आदि। आपको मालूम है कौन से योग में होता है दर्शन मोह की उपशमना? मनोयोग में होता है, वचन योग में, के काय योग में? हाँ, अरविंद भाई उत्तर बता देते हैं। हाँ बोलो। मनोयोग में, मनोयोग और काय, तीनों योग में से किसी भी योग में होता है। हाँ, पंचलब्धि के प्रकरण में हमने देखा था ये उसके कौन पात्र जीव है, हमने देखा है चारों गति का, भव्य, मिथ्या, दृष्टि आदि आदि हमने बातें लंबी चौड़ी लिस्ट देखी थी। जागृत होना चाहिए, वो मंद कषाय वाला होना चाहिए आदि बातें। कौन कषाय वाला होता है तो चारों कषाय में से कोई भी कषाय का उदय हो सकता है उसका। कौन उपयोग वाला होता है, जब सम्यक्त्व की, अभी करण की बात नहीं, सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है तो साकार उपयोग में होती है, बाद में वो दर्शन उपयोग हो सकता है। कौन सी लेशा में होते हैं? हाँ नहीं, हाँ छह लेशा किसके लिए ये आवश्यक, किसके लिए छह लेशा? देखो, नार की सभी कर सकते हैं, तो नरकों में तो तीन अशुभ लेशा हो सकती है, स्वर्गों में तीन शुभ हो सकती है, वो तो अपनी अपनी लेशा में ही होगा। मनुष्य और तीर्यंचों के लिए क्या कंडीशन है? नहीं, तीन शुभ लेशा में ही दर्शन मोह की उपशमना होगी। बाद में जब सम्यक तो उसका बना रहता है तो उसको कृष्ण लेशा तक के भी परिणाम हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा सर्वार सिद्धि से आया हुआ जीव एक अंतर्मुहूर्त में पलटते पलटते शुक्ल से कृष्ण भी हो जावे, उसकी बात नहीं है। दर्शन मोह की उपशमना करने वाले तीन शुभ लेशा में ही उसके ये कार्य घटित होगा। मनुष्य और तीर्यंचों के लिए बात है। अब जो कृष्ण लेशा वाला नारकी है सातवें नरक का, तो क्या है उसकी, कृष्ण की तो कृष्ण ही रहने वाली, वो कभी कृष्ण से नील भी नहीं होगा, परंतु कृष्ण में उसके जो तीव्र थी वो मंदता की ओर चला जाएगा, उसको कहेंगे विशुद्धि लब्धि हुई उसके। तो उस अपेक्षा से छह लेशा बताइए। परंतु मनुष्य तीर्यंचों में जब सम्यक्तो के सन्मुख हो जाता है और उसके करण मानता है तब उसके तीन शुभ लेशा होती है। हाँ, ये सब आएगी बात। हाँ, इन सब प्रश्नों का समाधान करके ये कौन सा वेद होता है, कौन से वेद वाले को सम्यक्त होगा? हाँ, तीनों वेद वाले। हाँ, वही तीनों में से कोई एक, देवों में भी तीनों में से किसी के भी हो, देवों में दो ही होते थे, नारकियों में एक ही होता है, हाँ, और मनुष्य तीर्यंचों में तो तीनों हो सकते हैं। इन प्रश्नों का समाधान करके चूर्णी सूत्रकार ने तीनों कर्णों का स्वरूप तथा उनमें होने वाले कार्यों का विवेचन किया है। ये सब अध प्रवृत्त में अनुकृष्टि वगैरह होती है, बाद में वो क्या क्या होता है ना, स्थिति कांडक वगैरह, अपूर्व करण में गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, वो सब आएगा। इसके बाद 15 गाथाओं के द्वारा दर्शन मोह के उपशामक की विशेषताएं तथा सम्यक दृष्टि का स्वभाव आदि बतलाया है। अब 11 नंबर के दर्शन मोह की क्षपणा, इस अधिकार में प्रारंभ में 5 गाथाओं के द्वारा बतलाया है कि दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ कर्म भूमिया मनुष्य करता है। कल शाम को बात निकली थी ना, किसमें आई थी, समय सार में क्या, उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आई थी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, हाँ, अरविंद भाई ने पूछा था प्रश्न, अरविंद भाई मेहता ने, उसके कम से कम तेजोलेशा अवश्य होती है। एक क्षपणा करने वाले की बात चल रही है, कम से कम यानी ऊपर के तेजो होगी, यानी पीत होगी, पद्म होगी या शुक्ल होगी। क्षपणा का काल अंतर्मूर्त होता है। दर्शन मोह की क्षपणा होने पर जिस भव में क्षपणा का प्रारंभ किया है उसके सिवाय, जिस भव में यानी कहाँ हो सकता है, मनुष्य में ही हो सकता है, उसके सिवाय अधिक से अधिक 3 भव धारण करके मोक्ष हो जाता है आदि, यानी उसके अलावा 3 भव कैसे हो सकेंगे। यहाँ से भोग भूमि, भोग भूमि से देव और देव में से मनुष्य, वो 3 भव हो जाएंगे। इस वर्तमान भव के अलावा 3 भव, यानी चौथे में वो मोक्ष चला ही जाएगा। या कोई 2 भव कैसा, एक देव का और फिर मनुष्य का, या नरक का और मनुष्य का, और या उसी भव में उसी भव में क्षायिक हुआ और उसी भव में मोक्ष चला गया। ये अधिक से अधिक उसके 4 गिनाए हैं। कहा गया 3 भाव। दर्शन मोह की क्षपणा के लिए, उसके लिए भी अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का होना आवश्यक है। वो तो सब डिटेल में बातें अभी उस समय आएगी है। अतः चूर्णी सूत्रकार ने इन तीनों करणों का विवेचन तथा उनमें होने वाले कार्यों का दिग्दर्शन इस अधिकार में भी विस्तार से किया है और बतलाया है जीव दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्तापक कब होता है तथा वह मरकर कहां कहां जन्म ले सकता है। मरकर ने वो तो जब क्षपणा का कार्य चल रहा है तभी दर्शन मोह की, यानी 3 है ना दर्शन मोह के, मिथ्यात्व की क्षपणा होता है तब मरण नहीं होता है, फिर अंतर्मूर्त रुककर फिर 3 करण मानता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा करता है तब भी मरण नहीं होता है, तो फिर अंतर्मुर जाता है और फिर सम्यक प्रकृति का वेदक रहता है, जिसको हम कृतकृत्य वेदक कहते हैं। ऐसी अवस्था में मर कर पूर्व में जो आयु बंदी है वहां जा सकता है, चारों ही गतियों में कहीं भी जा सकता है। जिसने सम्यक के पहले तिर्यंचायु, मनुष्यायु या नरकायु बांध ली हो तो उसके उस भव में क्षायिक यानी कृतकृत्य वेदक के साथ वो जा सकता है। सम्यक्त के पहले अगर मनुष्यायु बांधी है तो भोग भूमि का मनुष्य होगा क्षायिक सम्यक्त के साथ। ख्याल में आई बात? हाँ, चलो अब आगे की गाथा पढ़ने पे। अभी अपने ये तो यहाँ तक था ना, क्या देशवीर, हाँ यहीं तक था, हाँ दर्शन मोह की उपशमना और क्षपना इतना ही था। अब इस संबंध गाथा का अर्थ कहते हैं, 147 पृष्ठ, वही इस प्रकार है। दर्शन मोह की उपशामना नाम का 10वां अर्थाधिकार है। इस अर्थाधिकार में 15 गाथाएं प्रतिबद्ध है, वे कौन सी है? दंशन मोह सुवसामो इस गाथा से लेकर सम्मामिच्छा दिट्ठी सागारोवा इस गाथा तक 15 गाथाएं हैं। यहां तक 10 अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 50 होता है। दर्शन मोह क्षपणा नाम का 11वां अर्थाधिकार है। इस अर्थाधिकार में 5 गाथा सूत्र गाथाएं हैं, वे कौन सी है? दंशन मोह खवणा पट्टवो कम्म इस गाथा से लेकर संख्यज्जा च मनुष्येषु इस गाथा तक 5 गाथाएं हैं। यहां तक 11 अधिकारों से संबंध रखने वाली कुल गाथाओं का जोड़ 55 होता है। कितने ही आचार्य दर्शन मोहनी और चारित्र उच्च का काना दिख नहीं रहा है, स्पेस तो छूटी है वहां पर, और चारित्र मोहनी संबंधी अद्धा परिमाण के निर्देश के साथ 16 अर्थाधिकार हो जाते हैं। अर्थात यदि इन दोनों अधिकारों को स्वतंत्र रखा जाता है तो 15 अधिकार तो इन सहित हो जाते हैं, और इनके अद्धा परिमाण का निर्देश जिस अधिकार में किया गया है उसके मिलाने से 16 अधिकार हो जाते हैं। इस भय से दर्शन मोह की उपशमना और क्षपणा इन दोनों को मिलाकर एक ही अर्थाधिकार होता है ऐसा कहते हैं, परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि गुणधर आचार्य के मुख से निकली हुई 15 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली 180 गाथाओं में दर्शन मोह चरित्र मोह के अद्धा परिमाण से संबंध रखने वाली गाथाएं नहीं पाई जाती है। अतएव दर्शन मोह की उपशमना और दर्शन मोह की क्षपणा इन दोनों को स्वतंत्र अर्थाधिकार मानकर ही 15 अर्थाधिकार समझना चाहिए। शंका अध्ययन काल अद्धा कर तो थे काल, हाँ उसका अन्य जो कोई प्रमाण वगैरह बताएं। दर्शन मोह और चरित्र मोह, सब जगह चरित्र ही लिखा है, जनसन चरित्र ऊपर प्राकृत से लिया उन्होंने। दंशन मोह और चरित्र मोह संबंधी अद्धा परिमाण का निर्देश 15 अर्थाधिकारों में नहीं है तथा उनमें उससे संबद्ध 6 गाथाएं भी नहीं है, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, 15 प्रकार से ही विभक्त अर्थाधिकारों में 180 गाथाएं ही अवस्थित है इस आशय वाली पूर्वोक्त तो दूसरी सूत्र गाथा से जाना जाता है कि दर्शन मोह और चरित्र मोह संबंधी अद्धा परिमाण तथा 6 गाथाएं 15 गाथाधिकारों में नहीं आती है। फिर शंका आवलीय मणायारे इस गाथा से लेकर, ये आगे आने वाली गाथाओं की बात है, 6 गाथाएं दर्शन मोह और चारित्र मोह संबंधी अद्धा परिमाण नाम के अर्थाधिकार से संबंध रखती है, इसलिए अर्थाधिकारों में अद्धा परिमाण निर्देश को 15वां अर्थाधिकार होना चाहिए। हाँ अलग 6 गाथाएं पाई जाती हैं। समाधान नहीं, क्योंकि 15 अर्थाधिकारों से संबंध रखने वाली 180 गाथाओं में आवलीय मणायारे इत्यादि 6 गाथाएं नहीं पाई जाती है। चूंकि दर्शन मोह और चारित्र मोह संबंधी अद्धा परिमाण का निर्देश 15 अर्थाधिकारों में नियम से करना चाहिए, यह बतलाने के लिए गुणधर भट्टारक ने उसका अंत दीपक रूप से निर्देश किया है, इसलिए यह 15वां अर्थाधिकार नहीं हो सकता, यह अभिप्राय यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अतः भट्टारक एलाचार्य के द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्त व्याख्यान ही यहाँ पर प्रधान रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये विशेषार्थ हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद भाई, विनोद भाई।